किस आ जाओ यार। फिर जाके पहुंचे हम उधर हिमाचल में,
ठीक है।
और मैंने कहा ना तो ये डब्बे में अगर सामान घुसा दिया गया एक और एक जा ही नहीं पाएगा तो मैं तो फंस गया। अब मैं ये सामान छोड़ू वो सामान छोड़ू, एक बार शूटिंग के लिए जा रहे थे ना।
तो जब ये, क्योंकि ये वाली बात पहले हमने सुना है पर ये बात कभी एक्चुअली आज अभी जो बात ऑपरेशन मैनुअल बनाने की, एक तो मैन्युफैक्चरर से मैनुअल आता है और एक ऑपरेशन मैनुअल बनाना, इसका अगर आप प्रोसेस बता दें थोड़ा सा।
ऐसा है ना, एक डायग्राम बना के रखते थे, हमारे स्टूडियो में बना के रखते थे और अपने में भी, कि एक पूरा हमारे तीन कैमरे लगे हैं, सपोज तीन कैमरे लगे हैं, वो कनेक्शन कहाँ आ रहा है, ऐसे डायग्राम बना के रखते थे। कि मतलब एक अनजान इंजीनियर भी अगर है, सपोज वो भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, एक थर्ड कोई बंदा है, तो सामने डायग्राम से देख लेगा, थोड़ा नॉलेज तो होता है। एकदम नए आदमी को तो हम देते नहीं हो काम ना, नहीं दे सकते कि भाई उसको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हुआ क्या होगा और वो कैसे ऑन करना है, वो तो इतना बेसिक नॉलेज तो उसको वैसे ही सिखाना पड़ता है कि यहाँ पे स्विच है इसका, इतने BBP पे इसका स्विच रखना है, इतना ये रखना है। फिर वो डायग्राम रहता है हर स्टूडियो में, हर एडिट सूट में वो डायग्राम रहता है पूरे मशीन का, कि कैसे है, क्या है, क्या नहीं है, साउंड कौन से चैनल से आ रहा है ना, वो सब वो डायग्राम हर जगह बना के रखते थे।
इस डायग्राम को क्या कहते थे?
ऑपरेटिंग चार्ट बोलेंगे ना उसको, ऑपरेटिंग चार्ट बोलेंगे ना, कि भाई यहाँ से सिग्नल जा रहा है, ये इक्विपमेंट यूज हो रहा है, ये मशीन यूज हो रही है, ये मशीन पहले मैं तो अपना बना था, रैक का भी मैं सब बना के रखता था हर स्टूडियो में, कोई भी आएगा
यहाँ पे इधर से आया है, ये बोल से दिया उसने। अरे क्या हाल है, क्या है,
तो हम कहीं भी रहे ना,
और क्या हाल है, पहचान लिया? हाँ,
तो हम कहीं भी रहें, कोई भी टेक्नीशियन वो काम कर लेगा आराम से, या जो भी एडिटर है, सपोज हम नहीं है तो एडिटर है, तो वो मतलब पहले तो छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पावर ऑन करना है, अपना काम चालू करो, है ना। इतना नॉलेज तो उसको है कि भाई कौन सा प्लेयर है, कौन सा रिकॉर्डर है ना, और कौन एक AV रोल भी होता है, भाई तीन मशीनें लगी हैं, दो में पिक्चर है, एक में हमने रिकॉर्ड करना है, तो पहले ये वाली मशीन चलेगी इतने सेकंड, इसके बाद सेकंड मशीन चलेगी नहीं, वो तो उनका काम है ना। लेकिन हमारा जो था कि मतलब टेक्निकल की तरफ से कि इजी करके, मतलब बहुत आसान बना के रखते थे, वो जो अपना चार्ट बना के रखते थे ना हर जगह में, वैसे हमारा मल्टी कैमरे में भी होता था, मल्टी कैमरे में भी हमारा वैसे बना के रखते थे चार्ट, और वो नए जो लोग होते हैं उनको तो हम सिखाते हैं, तो साथ में रखते हैं।
तो जब आप स्टूडियो वगैरह आगे जाके स्टूडियो बनाए आप लोगों ने, उसमें भी फिर वो स्टूडियो का ऑपरेशन चार्ट वगैरह बनता होगा?
मैं बना के, सपोज आप मालिक हैं, बना के रख लिया कि मैंने ये कर रखा है यहाँ पे, है ना, कनेक्टिविटी कि कहाँ पे मैक है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे इनपुट है, कहाँ पे आउटपुट है, वो सारा डायग्राम उनको दे दिया, और कहाँ पे मतलब वो RS-422 जैसे होते हैं, और भी बहुत सारे कनेक्टर होते हैं ना, तो वो जो चीज़ है वो एक बारीक चीज़ होती है, वो तो उनको बताना तो कुछ नहीं है कि भाई 25 पिन की है, उसमें 25 पिन क्या क्या काम कर रहे हैं, अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो कई में ऐसे होता था उसमें बहुत सारे बंच आते हैं, जैसे XLR को होते हैं ना, और 25 पिन के तो कौन से पिन में
क्या जाता है,
क्या रहा है ना, वो तो हम, वो तो इतना बारीक में वो लोग को नहीं ले जाते थे, उनको ऑपरेट करना है बस, उनको ऑपरेशन तक ही रखते थे, क्योंकि वो तो फिर एक इंजीनियर का काम हो जाता ना, एक वायर टूट गई सपोज कहीं से, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमें बुलाएंगे कि भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, वैसे ऐसे हम काम नहीं करते थे, हम तो एकदम ऐसे बनाते थे कि प्रोफेशनल। एक स्टूडियो बनाया था मैंने तो यहीं पे गुड़गांव में कहीं, तो वो जो बंदे ने ना कैमरा लगा दिया, मतलब कि उसका पैच पैनल बना रहा था मैं, और पैच पैनल लगा हुआ था, मैं सुबह से शाम तक मैंने मतलब लगा रहा उस पर, उसने कैमरा ही लगा दिया मेरे ऊपर। अब मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कैमरा लगा रहा, मैं गलत तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो मैंने प्रोफेशनल ढंग से जैसे और दिन करता हूँ वैसे किया। तो उसने वो रेफरेंस लिया हुआ कि दोबारा राहत को नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं खुद ही कर लूँगा, है ना।
इसीलिए वो ले रहा है,
उसके सोच रही होगी, अपना कैमरा लगा रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो उससे मैंने 3,000 की बात करे थे, तो कहते 2,000 रुपये अभी ये रही हो। मैंने कहा चल छोड़, मैं गया भी नहीं दोबारा। मैंने कहा अगला आदमी मतलब हाँ बोल के फिर उड़ा, मैं दोबारा जाता ही नहीं था कभी ऐसे। तो उस डायग्राम की बात कर रहे थे ना आप, तो वो तो हम हर जगह बना के रखते थे, मतलब इजी, मतलब कि आपके दिमाग में, आपके इंजीनियर के दिमाग में पूरा बिठा दिया हमने कि ये है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो, बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हमें बुला लेना, अदरवाइज ये है।
छोटी प्रॉब्लम के लिए ये होता था, इक्विपमेंट आता था, डेमो पूरा पहले टेक्निकल टीम सीखती थी, सीख के देन उसके बाद प्रोडक्शन टीम को पूरी को बुलाते थे, बुला के कैसे कैसे आपको हैंडल करना है, कब जाओ कैसे कवर करना है, कैसे डस्ट में बचाना है, क्या
वो सब कनेक्टिविटी वगैरह जो टेक्निकल का काम होता था, उसके बाद जो ऑपरेशन जो भी करना है उन्होंने, क्या करना है, शूटिंग करना है, वो करना है, तो डायरेक्टर जो भी है ना वो लोग अपना करते रहते हैं, उनको ज़्यादा समझाने, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं उस बारे में,
उनका लाइन वो तो अलग ही लाइन है, प्रोडक्शन तो अलग ही।
हमारा काम है कि मतलब इनका काम चलना चाहिए बढ़िया से, हमें मतलब उसको सेट करके रखना है। अब जैसे मैं मल्टी कैम में जाता था, 10-10 कैमरे होते थे, सब पूरे पैनल लगे हैं, उनको मतलब पूरा मतलब वाइट बैलेंस करना, ये करना, वो करना, पूरे सिंक करना, सारे कैमरे सिंक करना चाहिए, एक जैसे कलर आने चाहिए सब में, सब कैमरे में एक जैसे कलर आने चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद पूरा अलाइनमेंट करके, उस टाइम बहुत मशीन भी ऐसी थी, हमें भी टाइम लगता था सीखने में ना, कि उसको खोलो, उसको फिर सेटिंग करो, कौन से कैमरे में क्या है, कौन से उसमें क्या है, पूरा फौरे का उसका था ना हमारा, कितना कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब सारे अलाइनमेंट हो जाता था, हम मॉनिटर मास्टर मॉनिटर ये है, ये फर्स्ट कैमरा है, सेकंड कैमरा, ऐसे करके ना पूरे, और फिर उसके बाद सर आप शूटिंग चालू कर लो, बैठा रहता था वहीं रहना पड़ता था हमें, बीच में कोई पंगा ना हो जाए।
तो एक सवाल जो मेरा आ रहा था मन में वो ये कि हाई बैंड लो बैंड यूमैटिक का एक ज़माना था, राइट, उसके बाद बीटा आने लगा, बीटा डिजी बीटा आने लगा, तो उसमें भी टेप्स होते थे, पर टेप के अलावा
और दूसरे भी आने लगे, वो छोटे छोटे, वो छोटे टेप थे, वो दिमाग भी कंफ्यूज हो गया, इतनी सारी मशीनों के साथ काम किया ना, तो मतलब भूल भी जाते ना यार कितनी मशीनें आती थी।
नहीं नहीं, पर मेरा सवाल ये था कि एक बहुत फर्क जो था यूमैटिक से जब बीटा आया, क्वालिटी पे है ना, वीडियो क्वालिटी पे आया था, पर साथ साथ मतलब उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कुछ असर पड़ा था क्या?
देखिए वो तो ऐसा है ना, मेंटेनेंस में तो वो काम करने का तरीका एक ही होता है, वो क्वालिटी की अलग चीज है, काम करने का तरीका
मशीन भी मशीन। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूमैटिक का इक्विपमेंट और बीटा के इक्विपमेंट साइज में बहुत फर्क है।
साइज में फर्क है लेकिन उसका जैसे लेने का मतलब टेप का पात, टेप का पात जो है ना वो भी करीब करीब वही रहता है, उसमें हेड इरेज हेड होता है, रिकॉर्डिंग हेड होता है, सीटीएल हेड होता है, ऐसे हेड होते हैं उसके ना। तो वो जो प्रक्रिया है उसकी, जब आप टेप को डालते ना वहाँ अंदर लेता है, फिर उसको थ्रेड करता है अपनी जगह में पहुँचाता है अंदर, वो उनमें करीब करीब एक ही जैसा होता है ना, क्वालिटी अलग होती है उसके, जो हेड के जो चीज है, जो हेड है
रिकॉर्डिंग हेड,
रिकॉर्डिंग हेड है, इरेज हेड है, मतलब बहुत सारे हेड होते हैं, वो सीटीएल हेड होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो वो चीज़ वो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता रहता है। जैसे पहले लो बैंड था, फिर हाई बैंड हुआ, फिर बीटा हुआ, फिर डीजी बेटा हुआ है, तो उसमें जो है फिर उसका थोड़ा बहुत डिजिटली होने लग गया, जब डीजी बेटा है ना तो डिजिटल सिग्नल देने लग गया हो, हम एक सिग्नल एक इनपुट देते हैं और उससे हम अंदर आठ सिग्नल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तार डालते हैं हम उसमें और उसमें आठ अलग अलग ट्रैक होते हैं, सपोज एक में गिटार बज रहा है एक में वो बज रहा है, तो वो चीज़ें वो डेवलपमेंट है उसका है ना, मतलब कि हम एक ट्रैक में साउंड दे रहे हैं तो वहाँ पे उसके जो सर्किट के जो प्रक्रिया है ना वो अलग अलग चीज़ को अलग अलग चैनल में दिखाता है ना, वो चीज़ है, तो वो डेवलपमेंट है उसका, लो बैंड से फिर हाई बैंड में गया, उसके बाद बीटा में गया, फिर डिजिटल बीटा में गया, तो ऐसे बढ़ता रहता है उसका।
तो उसमें मतलब आपका कहना है कि एक तरीके से काम करने का प्रक्रिया वही रहा, क्योंकि आउटपुट वही रहा,
तो काम टेप है वो, टेप का जो है ना प्रक्रिया मैं एक ही समझता हूँ, मतलब ज़्यादा वो नॉलेज के बारे में है नहीं मैंने कि भाई, लेकिन टेप को अंदर लेता है, टेप को अपने पाथ में ले जाता हूँ, वहाँ पे होता है रिकॉर्डिंग हेड होता है, उसमें इरेज हेड होता है, उसमें सीटेल हेड होता है जो कंट्रोल करता है पाथ को ना टेप को, फिर उसमें पिंच रोलर का एक रोल होता है, कैपस्टन होता है, पिंच रोलर होता है वहाँ पे उनका होता है, वो सब फिर हमें देखना पड़ता है कि भाई इसका पिंच रोलर की कंडीशन क्या है, मतलब कि टेप ऊपर नीचे जा रही है इसका मतलब कि आपके पिक्चर में जो है ना वो देना चालू कर देगा गड़बड़, तो वो तो हमें पता लगे, तो कोई बोलेगा यार मेरे यार ये आ रहा है टेप चला रहा हूँ ये आ रहा है, तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि इसके पिंच रोल जो है ना बैलेंस नहीं है, मतलब उसकी ख़त्म हो गया, उसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म हो गई, तो हम नया चेंज करेंगे, या तो फिर हमारे पास एक और उपाय था, हम उसको मतलब क्लीन करते थे अपने तरीके से, फिर उसको वैसे लगे लगे कर देते थे हम उसको।
तो पिंच रोलर से मतलब टेप ड्राइव का काम करता था
वो, मतलब अगर पिंच रोलर आपका स्लिप मार रहा है ना टेप को तो ऊपर नीचे जाएगा।
हेलो, नो इन द मीट इन द इंटरव्यू हाउ वाज इट?
Okay, that I'll tell, talk to you later. I'm in Aurobindo. Did you ask for that book on science fiction?
Yeah.
You want me to pick it up?
Yeah. Pinch roller tape drive काम करता है ना?
हाँ, pinch roller जो है ना उसके बीच में से मतलब वो पाथ में जाता है ना जब, तो यहाँ पे ऑडियो हेड है, यहाँ पे मतलब आपका वीडियो हेड ड्रम में है, ड्रम में वीडियो हेड है, सीटेल हेड भी होता है उसके अंदर ही ना, तो अगर वो ऊपर नीचे जा रहे हैं तो आपके साउंड क्वालिटी भी वो साउंड को बराबर नहीं पड़ रहा है, और जब टेप ऊपर नीचे जा रहा है ना उसमें अगर वो उसके अंदर वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई उसके, तो वो वीडियो हेड में भी ऊपर नीचे करता रहेगा वो, तो आपको कुछ गड़बड़ आएगा उसमें, पिक्चर साफ नहीं आएगी है ना।
टेप ऊपर नीचे मेरे एक टेप जंप करता है?
नहीं, वो जो यही जो ट्रैक है ना वो स्मूथ तब चलेगा, उसका पिंच रोल बढ़िया होना चाहिए, अगर उसके पिंच रोल में गड़बड़ी है तो आप जो है
जर्की हो जाएगा, वो
जर्की क्या होगा वो ऊपर नीचे ले जाएगा, तो साउंड में फ़र्क पड़ेगा, साउंड ट्रैक में फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग में है चाहे वो प्लेबैक में है, और प्लेबैक अगर वो रिकॉर्डिंग गलत करे तो प्लेबैक भी गलत करेगा, वो दूसरे मशीन में चलाएंगे तो उसमें भी गड़बड़ करेगा वो है ना, तो वो चीज़ें वो हमें टेक्निकल हमें देखना पड़ता था ना वो सब चीज़, तो बाकी वो जो चीज़ है ना टेप वाले में सब वही है, हमारे पुराने जमाने के जो थे वो
फीता वाला ये था कि जैसे ब्यूमेटिक वगैरह था बहुत बड़ा बड़ा होता था, ये हो गया बाद में बीटा आ गया हैंडीकैम आ गया
तो छोटा ही होता गया ना,
तो उसमें कुछ फर्क पड़ा?
नहीं, जैसे वो जैसे साइज छोटा होता गया टेप ड्राइव मैकेनिज्म वही रहा,
सब कुछ वही,
पर क्योंकि आपका भी पूरा सिस्टम छोटा होता गया है, छोटा होता को उसमें काम में कुछ फर्क पड़ने लगा क्या?
काम में देखो प्रोफेशनली जो है ना वो छोटे वाले तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए और उसके लिए हो गया, बाकी जिसमें एडिट वगैरह करते हैं जो डिजिटल बीटा जो चीज़ थी ना उसकी कैपेसिटी तो बहुत बड़ी थी, मतलब हैवी ड्यूटी थी वो है ना, वो छोटी वाली है ना, वो मैं नहीं समझता कि इतने हैवी ड्यूटी थे, वो पोर्टेबल थे वो, मतलब ऐसे काम चलाने के लिए वो वैसे थे वो। और क्वालिटी का भी मैं इतना तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन डीजी बीटा पे तो मेरा है, मतलब कि बीटा है, बीटा के पहले लो बैंड है, हाई बैंड है, धीरे धीरे करके तो डिजिटल बीटा देखा है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है मेरे हिसाब से। और वो छोटा वाला जो है ना, वो उसके उसको ये नहीं बोल सकता कि डिजिटल बीटा से ऊपर था वो, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी हैं इसके अंदर, इसमें
डीजी बीटा में
वो उसमें जैसे मैं टेक्निकल पर्सन था तो मैं उसको एक होता है ना कि ऑटोमेटिकली वो अपनी रिपोर्ट मेरे को दे देता है, मैं उसको अंदर से मतलब जहाँ पे उसके स्विच होते हैं ना वहाँ से स्विच में, तो सेल्फ डायग्नोज करता है वो, सेल्फ डायग्नोज तो मेरे को बता देता है। सपोज मैं जा रहा हूँ कहीं, पहले मैंने उसका टेप पाथ चेक किया, टेप पाथ देखा, टेप पाथ में ठीक ठाक लग रहा है मुझे देखने से, और उसके बाद मैं उसको सेल्फ डायग्नोज पे डायग्नोज करता है, सेल्फ डायग्नोज वो मतलब अपनी प्रॉब्लम मुझे बता देता है, सामने आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसके यहाँ पे कुछ दिक्कत है, वो बता देता है मेरे को। वो ये फैसिलिटी है, ये छोटी मशीन में वो चीज़
वो नहीं होती थी,
नहीं है, इसलिए बोला वो प्रोफेशनल एकदम कि उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी थी, है ना, इनके अंदर नहीं था, इनके अंदर मैंने लगाया नहीं,
यूमेटिक वगैरह उसमें नहीं था ये सब,
नहीं
सेल्फ डायग्नोसिस तो नहीं था उसमें,
यूमेटिक में
पर वो सिग्नल लेवल कंट्रोल ट्रैक होता था
शायद रहा होगा उसमें, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो बता देता है कि हेड के पोजीशन बता देता है कि इसमें ये है वो है, वो सब चीज़ दिखा देता था ना, मतलब हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है।
ये कौन से मॉडल्स में है, डीजी बीटा में ये कब आने लगी ये सब, ये सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन?
नहीं जब डीजी बीटा में भी है, डीजी बीटा में भी है, दोनों में वो
कैलाश ये सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन की बात हो रही है, वो बीटा में भी आ गया था, बीटा में भी आ गया था, बीटा में नहीं था,
नहीं बीटा में भी है,
बीटा में था,
बीटा में भी है, सेल्फ डायग्नोसिस का उसमें भी है, तो उसमें अंदर सर्किट में जाते हैं ना हम, तो वहाँ पे मतलब माइक्रो स्विच होते हैं, माइक्रो स्विच से हम
तो एक चीज बताइए फिर ये सेल्फ
चलता है
वो सॉफ्टवेयर थ्रू करना पड़ेगा,
वो पूरा एक सॉफ्टवेयर ही होता है उसके अंदर जो हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं ना, वो फिर देखता है पूरा, जैसे टेप थ्रेड कर रहा है वो, टेप को थ्रेड करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, अपनी स्पीड मोटर की होगी वो होगी, तो तब हमें पता लगता है इसकी मोटर की स्पीड में दिक्कत आ गई या ऐसे, हमें सारे पता लग जाता है उससे, वो उसके देखने से, वो बाद में देता है
बता रहा है वो,
और एरर भी देता है तो हम फिर देखते हैं यार ये वाला एरर किसका है, फिर हम मैनुअल में जाते हैं, फिर हम मैनुअल में चेक करते हैं कि यार ये वाला एरर दे रहा है तो इस इट मीन्स क्या है, फिर हम वहाँ जाते थे, फिर पता लगेगा हमें कि ये प्रॉब्लम है, फिर हम वहाँ जाके ढूंढेंगे उसको,
एरर कोड आता है एक,
हाँ कोड आते हैं, एरर कोड आते हैं ना, तो फिर मैनुअल में जाना पड़ता है, मैनुअल में वो सर्किट डायग्राम होते हैं बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे,
तो ये सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन से मतलब काम में सहूलियत भी मिली होगी,
हम तो टेक्निकल है ना, तो हमें देखना पड़ता है, हमें जो है ना उसको देखना पड़ता है कि जैसे सर्विस कर रहे हैं मशीन की, सर्विस करने के बाद हम उसको,
तो सर्विसिंग प्रोसेस जल्द मतलब इससे फर्क स्पीड इजी हो गया सर्विसिंग,
वो हमें बता देता है, मुझे भटकने की जरूरत नहीं, वो मुझे बता देगा
कौन सा हम क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है,
फिर बाद में कौन से पार्ट में है, फिर हम मैनुअल पे जाते हैं, फिर कि भाई अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, ऑडियो का होता है, वीडियो का होता है, सर्वो का होता है, सर्वो सिस्टम होता है, सिंक का सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ होती है उसमें ना, वो अलग अलग कांट होते हैं उसके।
ये पहली बार हम लोगों को पता चल रहा है, इतने सारे हमने इंटरव्यू किए हैं कि वो जो सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन जो थी ये बाकी लोगों ने बात नहीं की इसकी कभी।
मैं तो मेंटेनेंस करता था, तो मेरे को हो सकता है कि वो बड़े मतलब इंजीनियर टाइप के होंगे वो शायद नहीं, मैं तो मतलब
मतलब आप यूजर एक्सपीरियंस की तरफ से बोल रहे हो।
मैं ग्रास रूट से चला हूँ ना, तो मैं मतलब मैंने भी सीखा है, मेरे अपने जो सीनियर थे उन्हीं से सीखा है मैंने भी। पहले तो मुझे पता नहीं था कि भाई कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैंने भी सीखा है। और
करेक्ट है, तो मतलब हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं आपके मतलब जीवन यात्रा के बाद, मतलब मौर्य के केबल टीवी से शुरू करके मतलब ये सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन और प्रोसेस में भला प्रोसेस टेप प्रोसेस सेम था, पर जैसे जैसे जनरेशन बदल गए
चेंज हो रहे हैं। अच्छा फिर सेकंड क्या, जो हमारे जो 35 mm 16 mm जो 70 mm की जो बात है ना, उसकी क्वालिटी कुछ और ही है।
आपने उस पर भी काम किया है 35-70
नहीं, मतलब मैं विजुअली दिखता था ना। जब हम मतलब प्रोजेक्टर चलाते हैं उसमें उसके अंदर हाँ चलाते हैं ना, हम चलाते थे, हम फिल्मों को लोड करते थे, उसको चलाते थे, उसके बाद टेलीसिग्नल लगा के वो देखते थे ना, तो जब उसको वीडियो में कन्वर्ट कर उसमें वीडियो में ले जाते थे ना, तो उसकी उसकी क्वालिटी कुछ और होती थी, उसकी वो शार्पनेस और उसकी वो जो चीज़ है ना वो मैंने देखा है। कुछ
ये टेलीसिने कन्वर्जन के बाद क्वालिटी सब समझ में आता है।
हम वहाँ से जब चलाते ना प्रोजेक्टर से, उसके बाद जब देखते ना वो क्वालिटी, मतलब वीडियो क्वालिटी में उसमें बहुत फर्क समझा मैंने। जो सिनेमा जो होता ना इससे जो प्रोजेक्टर से जो देखा ना हमने, उससे इसमें बहुत फर्क है। वो
मतलब वीडियो और सिने में क्वालिटी फर्क,
एक तो फिर वो उसके जो उसके जो लाइटिंग और फिल्म का जो चीज़ है ना, वो चीज़ जो टीवी में देखते थे ना, तो उसके अंदर एक जान मतलब अलग ही देखते हैं। मतलब कि कोई बहुत सारे प्रोग्राम देखे थे ना मैंने वैसे, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त दिखता वो। और बीटा वगैरह में भी ठीक है, डिजिटल बीटा में भी ठीक है, लेकिन वो उसको मैंने ज़्यादा उसके अंदर कंट्रास्ट और ये सब ना, और ये सब चीज़ जो है ना बहुत।
ये क्यों होता है ऐसे, इतना 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 फ़र्क क्यों है सिने और वीडियो में?
नहीं होगा वो तो, देखो इतना बड़ा वो तो मेरे को भी इतना नहीं है पता, लेकिन वो जो आर्क लैम्प उसका जो पीछे से जो रोशनी जाती है वो तो खैर इसमें बल्ब जलता है, वो बड़ा वाला आर्क लैम्प तो बड़ा वाला होता है, रॉड होते हैं ना, तो सिनेमा हॉल में देखा ना आपने पिक्चर कितनी साफ दिखती है, कितना ब्राइट दिखता है, वो बड़ा स्क्रीन पे दिखता है।
मतलब एक तरीके से मतलब वो
मुझे लगा और वो टेक्निकली मतलब कि भाई वो तो मैं बता नहीं सकता कि भाई डिजिटल बीटा में उसमें क्या है ना। और उसके बाद हम बीटा से ही, डिजिटल बीटा से ही हम लाते हैं, शूट करके लाते हैं और उसको फिर हम कंप्यूटर में चाहे स्मोक हो या कोई भी हो उसमें एडिट करके क्लाइंट्स को पकड़ाते हैं बाद में, लेकिन करते तो हम डीजी बीटा से ही हैं उसको, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस में जाता हो हाँ। लेकिन मुझे लगा, मैं इसलिए बोल दिया आपको कि मुझे लगा कि मैंने उसमें ज़्यादा शार्पनेस
देखी है सिने में।
सिने का तो है
वो मतलब वो फिर बात आ जाती है उसमें
रीजन तो दे
रीजन में वीडियो में तो
बहुत हाँ वो तो
सिने में तो एक तो इन्फॉर्मेशन जो है पिक्चर के बारे में वो सिने और रील में बहुत ज़्यादा है, वीडियो से कई गुना ज़्यादा है।
तो वो जो चीज़ है ना जो, तो वो इतना मेरे को भी एक्चुअली पता नहीं है ना, इतना स्टडी हमने किया नहीं तो हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना उसके बारे में।
पर ये टेलीसिने कन्वर्जन करते हुए आपको समझ में आई है?
हाँ।
ये टेलीसिने कन्वर्जन में इतनी एक्सपीरियंस है आपको दिख गया ये
वो भी क्वालिटी? देखो लोग सस्ता वाला कर रहे हैं, हमारे जो था उस टाइम अच्छा प्रोफेशनल था सेंटर, क्यों हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो उनको हम गलत बात तो सिखाएंगे नहीं है ना, कि कोई भी चीज़ कि शॉट कैसे लेना है क्या करना है, वो हमारे वो लोग करते थे, मतलब जो ग्रुप था हमारा ना जो जो देते थे, तो तो उनको आगे प्रोफेशनल बनाना है तो उनको तो मतलब प्रोफेशनली ही हर चीज बताएंगे, है ना, तो उस हिसाब से
ओके। तो एक मतलब हमने थोड़ी सी वर्किंग तरीके से हट के थोड़ा सा वर्क कल्चर वर्क माहौल के बारे में, सेंडिट में आपको अगर कोई पूछे कि मतलब आपने कई सारे कंपनियों में काम किया, TV18, UTV, USL वगैरह, सेंडिट और उनमें कोई एक कोई खास फर्क क्या था काम करने के माहौल में?
देखो बाहर का जो है सेंडिट में हमारा ये रहा ना कि सेंडिट में एक तो हम सीख रहे थे, हम मतलब सीख रहे थे, मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखना था, तो हम मतलब इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे, हमारा जो वो था मतलब विजन था हमारा जो ये था कि सीखना था कि हमें सीखना आगे बढ़ना है। बाहर जो है वहाँ मारा मारी थी काम की, एक कंपनी को जाने थे बाहर में वो अपना आगे बढ़, लेकिन खैर हमारी आदत नहीं थी वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो हम सीख रहे थे और सीख सीख के एक लेवल तक जब तक पहुँचे तो उसके बाद हमारा एक रास्ता ही बंद हो गया। दो कितने 20-25 सौ रुपये हमें तनख्वाह मिल रही है, अब हम अपना गुजारा नहीं कर सकते तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, है ना, वो था मतलब वहाँ पे एक किस्म से हमारा जो मेहनत से हमने सीखा था उसके बाद भी सीखा, इसके बाद नहीं कि हम भाग गए तो वहाँ सीखा नहीं।
पर मतलब जैसे बात अगर अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो गलती करने मतलब आमतौर पे हम जब गलती करते हैं तो लगता है यार ये अपना बॉस ही क्या कहेगा, हम पता नहीं इसको छिपाना चाहिए बताना चाहिए, इस टाइप दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जब हमें लगता है कि हमने
कोई गलती नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, और गलती भी हम लोग करते नहीं थे, और फिर हमारी यूनिटी बहुत थी, मतलब हम लोग जाते थे ग्रुप में जाते थे कभी कहीं कोई प्रोग्राम है शूटिंग के लिए, पूरा भारत में कहीं ना कहीं जाते रहते थे हम लोग ना, तो पूरे ग्रुप में रहते थे, 5-7 लोग होते थे, कभी ज़्यादा भी होते थे, हैं तो वो अच्छा मतलब प्यार प्रेम ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है। बाहर जाके वो चीज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, बाहर जाके फिर वो अपना मेरा जॉब है, मैं टेक्निकल देखता हूँ तो कोई प्रोडक्शन वाला मेरे को क्या यार रावत यार तुमने यार ये नहीं किया वो नहीं किया ऐसा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, पूरा ग्रुप की जिम्मेदारी होती थी यहाँ पे। अब जैसे शूटिंग के लिए जा रहे हैं डायरेक्टर अपना काम देख रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो अपना देख रहा है, जो और दूसरे ग्रुप हैं जो मतलब हमारे मतलब खाने रहने की व्यवस्था कर रहा है उसका अपना होता है, और हमारा कंसंट्रेशन टेक्निकल पे रहता है कि हमारे इक्विपमेंट एकदम ओके होना चाहिए, हैं तो बंटा रहता था, लेकिन हम एक जगह रहते थे, खाना पीना रहना अपनी खुल के बात करना है ना यही था, और वहाँ भी ऐसे मौके नहीं मिले हमें। अब जैसे वहाँ पे गया तिबेटन तो ऑफिस में वहीं बैठा रहा, मैं स्टूडियो में ही रहा, तो वहाँ पे भी कई मतलब मेरे डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग थे, तो आपस में थोड़ा सा मतलब वो रहता था, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमारा
सीखने का माहौल अच्छा था,
यहाँ पे सीखने का माहौल भी था और अपना ग्रुप भी सही था, कुछ लोगों की अपनी सोच भी थी कि हमें इंटरेस्ट लगता था, हम रूरल एरिया में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो हमें नॉलेज मिल रहा है। जैसे आपको बताया ना कि ऐसे टॉप IAS ऑफिसर जो कि मतलब अपनी इतनी अच्छी नौकरियां छोड़कर समाज के बीच में घुस गए, है ना, एक आध का उदाहरण बता सकता हूँ। एक बार हम गए थे आंध्र प्रदेश का एक इलाका था, वे अब बंगाल के उधर आसपास है, तो वहाँ पे जो थे वो मेरे ख्याल परमेश्वर राव ऐसे कुछ नाम था उनका, बूढ़े थे बहुत, और वो अपने पद से छोड़ कर वो एक थैला उसमें अपने कॉपी लेके वो घूम रहे थे पूरे इलाके में। वहाँ पे क्या होता था, जब उनसे पूछा हमने तभी हमें पता लगा ना कि वहाँ पे लोग आंध्र प्रदेश गर्मी बहुत पड़ती है, हमारी भी खाल निकल गई थी वहाँ गर्मी से, तो वो जब घूम रहे थे बस्ती बस्ती ये सब के, भाई मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, तो मेरे को साथ दोगे तो लोग एग्री होने लगे। तो वहाँ पे क्या था कि धान की खेती होती थी उनकी, नीचे समुद्र के आसपास धान की खेती होती थी, और जब वहाँ से साइक्लोन आता था तो वो ख़त्म हो जाता था वो खेती बाड़ी उसकी ना। एक तो था उनका, उन्होंने पढ़े लिखे थे, उनके कलम में जान थी, मैं ये समझता हूँ। उन्होंने पूरे हिल एरिया में जो है ना, मतलब रबर ट्री, काजू के ट्री, गोट फार्म, मुर्गी फार्म, कॉ फार्म, मतलब उन्होंने क्या क्या ना किया वहाँ पे, बहुत कुछ कर दिया। और उसके बाद वो आ गए नीचे समुद्र के इलाके में, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों को बोला कि भाई मैं एक काम करने चाहता हूँ तुम्हारे लिए, सब साथ दोगे? कहता हाँ। उन्होंने नमक बनाने सिखाया आपके खेत में, आपको नमक बनाने सिखाया, नमक कैसे बनाते हैं, और मार्केट उन्होंने देखा है, मार्केट के लिए सोर्सेज उन्होंने जोड़े क्योंकि पढ़े लिखे थे ना। और वहाँ प्रॉन पालने, मछली पालना, तो उस टाइम मतलब प्रोसेस सेंटर में गए ना हम लोग, तो इतने बड़े बड़े प्रॉन थे। तो मैंने बोले सर कहाँ जाते हैं प्रॉन, कैसे होते, हमने कभी खाए भी नहीं थे। तो फिर वो बोला कि ये अमेरिका वगैरह में जाते हैं, उस ज़माने में मतलब जब हम गए थे तो कहते 500 रुपये के जी बिकते वहाँ पे प्रॉन, और नमक कर मछली और ये सब ना, और जो उनके बगीचे थे ना, बगीचे उन्होंने नीचे से पंप करके पानी ऊपर तक कूल बना रखे थे, उनमें पेड़ थे, पूरा इलाका जो है ना फल फ्रूट सब कुछ। तो जो गांव की जो महिलाएं होती थी वो निलाई गुड़ाई के लिए आती थी ना, तो घास फ्री ले जाती थी और फल सब्जी भी फ्री ले जाती थी, और मैस भी था उनका, वहाँ खाना भी खाती थी, ऐसे इस तरह का माहौल बनाया। तो वो लोग बोल रहे कि सावा मान ले तो भगवान है, मैंने कहा मेरे लिए भी है भाई, इतना बड़ा तब बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं।
एक तरीके से जो आप कह रहे थे कि मतलब ये एक तो सीखने का माहौल भी था, और पर उसकी जो सोशल सेटिंग थी उससे भी बहुत असर पड़ता था।
तो काफ़ी जगह जाते थे हम लोग ना, और अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। तभी तो मैंने अपना वो ट्रैक बदलने की कोशिश करी ना, मैंने कहा मैं अपने पहाड़ में जाके ना वहाँ पे कुछ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत है, लेकिन वेस्ट लैंड हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे मैं भी हल लगाता था 11-12 साल की उम्र में, हल भी लगाता था, गोबर भी डालता था खेत में, और माँ बाप के साथ में थोड़ा हेल्प भी करता था। आज जो है ना वहाँ पर मतलब अच्छे अच्छे ज़मीन सब बंजर हो गई।
क्यों?
जानवर। अब मेरे घर यहाँ पे है, खेत मेरे 2-3 किलोमीटर दूर है, अब मैं कैसे देखभाल करूँगा, और अब हमारी एज भी हो गई।
करेक्ट
ना, और जो कर भी रहे तो जानवर ख़त्म कर दे रहे हैं।
ठीक, ओके। कुछ और आप कैसे बात करते करते कोई ऐसा पॉइंट आया होगा आपको, अचानक ध्यान आया कि यार ये घटना कुछ जो जिससे हमें समझने के लिए कुछ आसानी हो जाए, कोई एक ऐसी घटना जिसमें?
नहीं, घटना तो एक वही बताई थी, वो बनवासी नाव लाओ, मतलब बहुत हंसे उस दिन ना। और मैंने वो पीयूष शर्मा दर में एक चारपाई में सो गए, तो मैंने ऐसे सो गए, इधर वो सो गए, इधर मैं सो गया, मैंने पैर बांध दिए दोनों के रात को। मैंने बोला तो बहुत हंसने लगे बाद में लोग ना, मैंने बोला लकड़बगा, उन्होंने बोला लकड़बगा आता है एरिया में, तो मैंने कहा भाई तेरे को खींचेगा तो मेरे को नींद खुल जाएगी, और मेरे को खींचेगा तो तेरी नींद खुल जाएगी ऐसे। और बाकी तो ऐसे छोटे मोटे होते रहते थे कई।
एक बार एक टीम में वो मल्टीमीटर भी लगा के आ गए थे।
ना, मैंने लगाया यार, वो एक बंदा था हमारा, टेक्निकल बंदा था, वो लगा गया
फोटो।
वो तो यार बेचारा है भी नहीं अब धरती में यहाँ, तो वो लगा के आ गया मल्टीमीटर, उसको मतलब अर्थिंग का सीन रहा होगा ना। अब उसने मल्टीमीटर के एक पिन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो काम करने लग गया टीवी, है ना। तो वो बेचारा है नहीं अभी यार,
रेजिस्टेंस का।
खैर, ये तो एक इंसिडेंट और हुआ, केबल टीवी कर रहे थे, तो देखो मैंने तो न तो कोई सीखा है न कुछ है ना, वैसे मतलब क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एक बंदा था, वो उसने उसने कर रखा था, मतलब डिप्लोमा कर रखा था, तो मैं शाफ्ट के अंदर इतना था शाफ्ट, मैं शाफ्ट के अंदर घुसा हुआ था, मैं केबलिंग कर रहा था। मैंने उसको बोला यार ये वायर दे यार, ये अंदर जो है ना जा नहीं रहा है रोड, उसके अंदर रूम के अंदर जा नहीं रहा है केबल, तो एक मुझे तार ढूंढ के ला। तो वहाँ पे बिजली के तार जा रहे थे, मैंने देखा नहीं लेकिन किसी ने देख लिया उसको, उसने कटर था लोहे का, उसने फेस को काट दिया खड़क से। अब उसके दौड़ा वहाँ से गिरा, उसके पकड़े हो जाके वो भाग भाग के आए वहाँ पे, तो हमारा जो इंजीनियर था राजीव मेहरोत्रा कि राजीव राजीव, बलवंत को करंट लग गया, वो आया भागता हुआ आया क्योंकि डर था अगर मर गया बंदा तो दिक्कत हो जाएगी ना, उस टाइम केबलिंग कर रहे थे वहाँ चैनल के लिए। अब जब आया कहते बलवंत, मैंने कहा जी, कहते क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला इसको कि भाई तार दे, लेकिन आवाज़ तो मैंने सुन ली थी लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं शाफ्ट के अंदर घुसा हुआ था मैं, तो है ना वो लंबे लंबे वो थे मतलब नहीं हाँ मतलब कि इधर रूम है मतलब दोनों, मैं उसके अंदर घुस के मतलब दोनों तरफ केबलिंग कर रहा था। उसको मैंने बोला अरे छेद के रास्ते तार नहीं जा रहे, कोई तार लागे दे, उसने फिर से काट दिया। जब मैं नीचे आया ना उतर के, भाई मैंने कहा साला तार लटक रही हाथ में यार, फिर मैंने बोला राजीव को, मैंने बोला सर वहाँ आवाज़ तो मैंने,
ये राजीव मेहरोत्रा वो पीएसबीटी वाला
है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे इंजीनियर था एक।
ओके
तो मैंने कहा भाई ये तो, और वो भागता हुआ है कि यार कहीं बंदा वहाँ मर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नया नया चल रहा था काम
उस समय जब आप कर रहे थे। ये लेडीज कितने थे सेंडिट में, कम थे?
नहीं काफ़ी थे,
काफ़ी थे। वो भी सब टेक्निकल साइड में जाते थे या
नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो कोई कोई प्रोडक्शन के साइड में थे
ज़्यादातर, प्रोडक्शन में
कोई प्रोडक्शन के साइड में थे और कुछ टेक्निकल में भी। एक आध लड़के आए थे हमारे, वो कश्मीर की लड़की थी ना, क्या नाम उसका, तो वो आए टेक्निकल में, तो हमारी वही आई, बाकी वो प्रोडक्शन में थे। और बहुत सारे लड़के आते थे ना, मतलब जो हमारे ट्रेनीज होते थे वो विदेश से भी आते थे, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, नेपाल भूटान से, कहाँ कहाँ से आते थे सब, वो ज़्यादा ये नहीं है। तो सारे हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रहता था।
पर आमतौर पे ये मतलब पूरी तरह टेक्निकल, शायद वो मंजू आप बता रहे थे।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम था उसका ना,
टेक्निकली नहीं थी
वो मतलब उसका, जैसे हमें मतलब न्यू एकदम है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें मतलब फेज न्यूट्रल का पता नहीं है, फेज कहाँ लगाना है, न्यूट्रल कहाँ लगाना है, अर्थ कहाँ लगाना है, वो कुछ भी वो उसको कुछ पता नहीं था, है ना। तो हम लोग तो थोड़ा सीख लिए, है ना, वो चीज़ था। वो बेचारी कोई प्रॉब्लम थी ना उसकी, तो इसलिए उसको ले लिया था सैंडेड में कि चल यार तू यहाँ पे रह ले, हाँ जो भी है मतलब। तो उस तरह के थे, बाकी वो टेक्निकल में कोई आए नहीं वहाँ, बाकी
तो टेक्निकल में कब आने लगे लेडीज?
लेडीज नहीं, लेडीज कोई नहीं थी हमारे यहाँ, सब जेंट्स थे,
इंजीनियरिंग टाइप के वो बाद में आए
इंजीनियर। जब रिसर्च लेबोरेटरी, जब हमारा एक तो केबल टीवी का था मेन, उस टाइम से इंजीनियर जुड़ने चालू हो गए, टेक्नीशियन जुड़ने चालू हो गए, फिर ट्रांसमिशन था हमारा मोहरे में ना, उस टाइम जुड़ने लग गए, फिर हम वो कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट, वो सब टाइटलिंग और ये सब करने के लिए, और ये चलने लग गया। और फिर उसके बाद जब रिसर्च सीआरएल मतलब सैंडिट रिसर्च लेबोरेटरी खुली ना, तो उसमें भी हमारे काफ़ी सारे लोग आए, लड़के लोग, ज़्यादातर लड़के नहीं आए।
लेडीज तो अभी भी थोड़ा कमी है रिपेयरिंग मेंटेनेंस में, ऐसा
रिसर्च में भी नहीं थी,
उस समय ज़्यादा मिलेंगे आपको, असेंबलिंग वगैरह करना है, कुछ करना है
नहीं। वो तो फिर वो टेक्निकल में जो है लड़के थे सारे, इंजीनियर भी जुड़ने चालू हो गए थे ना बहुत सारे, अभी कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, वो जमाने में जब 77 में मैं आया था तो कुछ लिखते वो विदेश में कोई पढ़ाते हैं, सुना है मैंने, और जैसे वो चैटी है, चैटी कुछ करता है, वो हमारे कैमरामैन था, ट्रेनी से उसके बाद वो कैमरामैन बन के फिर वो अमेरिका में है कहीं, तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग हैं।
और कोई सवाल आपको? ठीक, तो थैंक, मतलब काफ़ी आपने, 1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट आए हैं इसमें, तो मेरे को लगता है कि एक चीज़ की कमी,
लाइव की, लाइव में ना, लाइव में बहुत कुछ देखा हमने, आप समझ गए होंगे कि मतलब एक 11-12 साल का बच्चा जब आता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उन्हें कहानी, अगर कहानी बनाएंगे तो कई घंटे तक चलेगा। मैं आर्मी में बताओ, आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े बड़े जनरलों को मैं चाय पिला रहा हूँ, कॉफ़ी पिला रहा हूँ, और भर्ती होने के लिए लैंसडाउन जा रहा हूँ, तो मेरे बराबर बेवकूफ़ कौन है, है ना? अगर जब मैं 18 साल का हुआ, किसी भी जनरल साहब को, किसी हमारे उत्तराखंड के कई अफसर थे उस टाइम वहाँ पे, मैं किसी को बोलते सर मेरे को भर्ती करा दो, तो वे दिल्ली में करा लेते। मैं लैंसडाउन चला गया दिसंबर का महीना, चावल एक होटल में मैंने चावल और थोड़ा दाल खाई तो मेरे दांतों ने दबा नहीं पाया मैंने चावल, आप लगा लो साहब, ठंड से इतनी हालत ख़राब थी, और मैं भर्ती होने चला गया वहाँ। 5 दिन बाद भर्ती थी, तो मैं जब ठंड से मरा, मेरे पास 70 रुपये मेरे जेब में कुल, और लैंसडाउन गया हूँ मैं, चल बेटा मैंने कहा वापस। तो मतलब कई मोड आए, मतलब कि बोलते ना कि कभी भी जो हमारी इसमें है ना वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वो चीज़ मेरे को अभी भी याद है। कि
एजुकेशन का मतलब पढ़ाई कहाँ तक करी थी?
पढ़ाई तो मैं मतलब पाँचवीं पढ़ के आता गांव से, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एक प्रचार किया, नाइट स्कूल थे उसको बोलते ना, उसको बोलते हैं कि एडल्ट एजुकेशन शुरू हुआ था 67 में मैं आया था, और 67 में या 68 में फिर मैंने वो ज्वाइन किया स्कूल यहाँ पे, वो एडल्ट एजुकेशन था वो, उसमें जो नौकरी करने वाले थे ना वो पढ़े लिखे जो नहीं थे वो लोग बहुत सारे थे, और हम लोग जोड़बाग में हमारा स्कूल था एडल्ट एजुकेशन, हम प्रचार भी करते थे, चलो यार जो पढ़ा लिखा नहीं है चलो ऐसे करके, तो हम बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, फुल भरा रहता था स्कूल। तो मैंने वहाँ पर 6 से लेके और 11 तक पढ़ा वहाँ पे, लेकिन आर्ट साइड से पढ़ता था, और मैं टेक्निकल में घुस चुका था क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंडिया में था, उसके बाद मैं सेंडिट में आ गया था, हाँ सेंडिट में आ गया था ना, सेंडिट में नहीं आता, कंप्यूटर साइंस इंडिया में आ गया था उसके बाद, पहले आर्मी हेडक्वार्टर में था उसी टाइम मैं पढ़ना चालू किया मैंने, और उसके बाद मैं इसमें आया कंप्यूटर इंडिया में आया, कंप्यूटर इंडिया के बाद फिर मैंने सेंडिट ज्वाइन किया, उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था, आत्माराम कॉलेज मेरा सेंटर पड़ा धौलकुआमी, और किताबें नहीं खरीदी, ABCD कुछ नहीं लिखा, और फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, मतलब बहुत कम नंबर आए, वो जो हर सिंह ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वही, बाकी 0-0 खत्म। अब मैंने कहा भाई तू टेक्निकल लाइन में जा रहा है, तेरे को टेक्निकल का ABCD नहीं है, तेरे साइंस नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, मैथमेटिक्स अरे ये सब वो तो बहुत ज़रूरी चाहिए ना, तो मैंने कहा मेरी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, 0-0 मैं सर्टिफिकेट भी नहीं लाया, और मोहरे में काम करना चालू कर दिया।
तो फिर मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स वगैरह कुछ तो सीखना पड़ा आपको, वो काम करते 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 सीख लिए?
नहीं, मैं सर्टिफिकेट ही नहीं लाया, जो भी पढ़ा होगा ना हायर सेकेंडरी जो भी पढ़ा होगा, नाइट स्कूल थी, नौकरी करके आते थे फिर स्कूल में, फिर रात को 10 बजे घर जाओ, ऐसा था ना, तो दिन भर काम करो है ना, फिर रात को घर जाओ, फिर सुबह फिर वहाँ पे अफसर को कॉफ़ी पिलाने के लिए आओ, फिर उसके बाद वहाँ से जाओ फिर स्कूल जाओ, ऐसा था, तो लाइफ ऐसे निकल गई। फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद, तो फिर उसके बाद वो बंद कर दिया, पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया, मैंने कहा टेक्निकल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ हूँ नहीं मैं, तो वो सीख सीख के मैं आगे निकल गया फिर। ये कहानी हो गई।
तो मतलब तो फॉर्मली आपने मतलब
मैं सर्टिफिकेट भी नहीं लाया, आप लगा लो।
करेक्ट, हाँ सही।
मैंने इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तो मैं समझ गया। मेरे को पहले से ये एहसास हो गया था, टीचर पढ़ाते ना उनको पता नहीं अलजेब्रा कहाँ काम आएगा, वो तीन बीज गणित अंक गणित और ये सब गणित होती है ना, साइंस होता है, तो क्लास में बताना चाहिए बेटा तुम ये चीज़ पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बनोगे, ये चीज़ पढ़ोगे तुम डॉक्टर बनोगे, कभी किसी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं है। मैंने कहा तो सब झूठी पढ़ाई हो रही भाई। मतलब
थैंक यू, धन्यवाद।